सूरत यासीन मक्की सूरत है। 5 रुकू हैं इसके और 739 कलेमात, 83 आयात हैं, 83, 3090 हरूफ हैं। सूरत यासीन उन सूरतों में से है कि जिनसे अमूमन मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ मौाक़े पे पढ़ते हैं। इसके बारे में जो रिवायात हमारे तक पहुंचती है उसमें कुछ रिवायात तो सही दर्जे की हैं, लेकिन कुछ रिवायतें जो बहुत मारूफ हो चुकी हैं लेकिन उसकी सनद में थोड़ा सा यानी ज़ोफ़ पाया जाता है। अब इस वक्त आपके लिए इस बात को तो सोचने की ज़रूरत नहीं कि ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, लेकिन बस इतना ही समझ लें कि जैसे कोई बात मैं अपनी आप तक पहुँचाऊँ तो मैं आपके सामने वो बात कह रही हूँ, लेकिन कोई बात आपको दर पर्दा मेरे नाते से पता चले तो हो सकता है वो बात मैंने कही हो सकता है ना कही हो। एक आम फहम में समझने की बात है। तो बहरहाल इसके बारे में जो रिवायत मारूफ है सही तिर्मिज़ी की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से कि नबी सल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है। जिसने सूरत यासीन पढ़ी अल्लाह ताला इसको 10 बार कुरान पाक पढ़ने का अजर देगा। ये रिवायत मौजूद है लेकिन ज़ईफ़ है। हाँ, इस पे बात की जाए तो ये की जा सकती है कि कुरान पाक का दिल कहने से क्या मुराद है, कि जो जिस्म में दिल की हैसियत होती है ना, पूरे जिस्म को खून पंप करता है। आप देखिए कि जिस्म का हर उज्व कट कट के गिर जाए लेकिन इंसान फिर भी जिंदा रहता है, लेकिन जब दिल मरता है तो उसके साथ ही मौत होने लगती है। तो बिल्कुल सूरत यासीन के अंदर जो पूरे कुरान का दिल है, जिसको आज तक हम मुसलमानों में से अक्सर लोग समझे भी नहीं कि कुरान का या दीन ने इस्लाम का जो बुनियादी मकसद वो क्या है, इंजार, दावत, इब्लाग, लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाना। हमने तो भी खुद नहीं सीखी, दूसरों को कहाँ सिखाएंगे। तो जिस मकसद के लिए ये कुरान उतरा, ये उम्मत भेजी गई, उसके मकसद को इस सूरत में बहुत खुल के वाजे किया गया। हम इस सूरत में पढ़ेंगे यानी अंबिया कराम को भेजा गया, लोगों ने झुटलाया, फिर दूसरा नबी आया, फिर वो गया, फिर उसके साथ तीसरे को भेजा। तो अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा होने के नाते हम सब का मकसद ज़िंदगी का ये होना चाहिए कि हमारी ज़ात से लोग अल्लाह के करीब हो जाएं। और इंशाल्लाह अभी पहले लेसन में ही इसके ये बात आएगी। एक और रिवायत इसके बारे में मिलती है। आपने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह यासीन पढ़े उसे बख्श दिया जाता है और जो सूरह दुखान पढ़े उसे भी बख्श दिया जाता है। ये सही रिवायत है। इसी तरह मुसनद की एक रिवायत में है कि सूरह बकरा कुरान की कोहान है, जैसे वो ऊँट की हम्प होती है ना ऊपर ऊंची नुमाया हिस्सा, और सूरह बकरा वाकई बहुत ऊंची, यानी उसमें आयतें भी ज्यादा हैं, अहकामात भी ज्यादा हैं और इसकी बुलंदी है। इसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते उतरते हैं। इसकी एक आयत यानी आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से लाई गई, इसके साथ मिलाई गई। सूरत यासीन कुरान का दिल है। जो शख्स नेक नियति से अल्लाह की रजा जोई के लिए से पढ़ेगा इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसे उन लोगों के सामने पढ़ो जो सकरात की हालत में हो, मरने वाले के करीब। खुद पढ़े इंसान, कुछ ना कुछ उनके ऊपर रहेगी। बाज़ कहते हैं कि इससे मरने वाले की जो मौत का वक्त होता है वो आसान हो जाता है, लेकिन ये सारी बातें सुनते वक्त ये जहन में रखिएगा कि किसी को कुरान का फ़ायदा तब ही होगा जब खुद उसका उस पर अमल भी होगा और उसका यकीन तो होगा। जो शख्स सारी ज़िंदगी खुद कुरान ना खोले, जो नमाज़ भी ना पढ़े, जिसके अकीदे में शिर्क और क्या कुछ हो चुका हो, आप उसके पास बैठ के 100 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ दें, फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दवा खाने वाला खुद भी जब दवा खाता है फिर ही फ़ायदा होता है, सिर्फ दूसरा उसकी तरफ से अपने मुंह में गोलियां खाता जाए, सिरप पीता रहे, पीने वाले को फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए कि एक शख्स बिलफर्ज सारी ज़िंदगी नेकी का काम करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, सूरह यासीन से भी उसको मोहब्बत थी, पूरे कुरान से मोहब्बत थी। ये नहीं कि सिर्फ सूरह यासीन को ही एक पूरा हिस्सा बना लिया जाए। बाज़ लोग पूरा कुरान खोलते ही नहीं, सिर्फ ये ख़ास चंद सूरतें पढ़ के कहते हैं हमने हक अदा कर दिया, तो ये तो और ज़्यादती है। अल्लाह ताला को हम अपने दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि हमें बस ये 5 सूरतें पसंद हैं, बाकी सूरतें नहीं। लेकिन बिलफर्ज़ एक शख्स पूरी ज़िंदगी करता रहा, अब मौत के वक्त हालत ऐसी है कि वो पढ़ नहीं सकता। अब उसका दिल तो अटका हुआ है ना कि हाय मैं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ सकता का अच्छा वो नहीं पढ़ सकता, अब तुम उसके लिए पढ़ो। तुम उसके लिए पढ़ो से मेरा ये नहीं है कि उसको सवाबो, यानी तुम पढ़ो। और इस सूरत में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा बड़ा खूबसूरत तौर पर बयान किया जाता है। तो लिहाजा ऐसी रिवायतों को सुनने के बाद जो दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए वो क्या है कि अल्लाह हमें इन सूरतों का पैगाम समझ आए, मकसद क्या है, कहा क्या गया है, और उसके लिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कि कम से कम हम देखें कि नायात में अल्लाह ताला ने अहकामात क्या रखे हैं। हम कुरान पाक को सादा सादा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, ठीक है जी, बरकत होगी। तर्जमे वाले कुरान से खोल के पढ़ लेते हैं तो भी बस वो तर्जमा ही आता है, लेकिन इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसके एक एक लफ्ज़ को तफसीर के रंग में पढ़ने से क्या समझ में आता है। और अगर आप पॉइंट्स नोट करेंगे इंशाल्लाह फील करेंगे कि इस थोड़े से वक्त में आप इतनी बातें अपने साथ लेके जाएंगे कि सामने रख के आप किसी को भी अल्लाह की बात जो है वो बताना चाहें तो अल्लाह के हुक्म से वो होगी। एक और रिवायत मुसनद बज़ार की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी चाहत है कि मेरी उम्मत का हर हर फर्द इसको ये सूरत याद हो। बिलाशुबह इस सूरत में कोई शक नहीं कि ये अच्छी खूबसूरत सूरत है, लेकिन अकीदे से लेके जिंदगी भर के सारे कामों से गुजरते गुजरते दुन कायनात पे गौर व फिक्र करवाते हुए ये सूरत जो है ये इंसान को मौत की याद दिलाती है। तो आइए सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यासीन, ये हरूफ़ मुक़त्तात हैं। हरूफ़ मुक़त्तात क्या होते हैं? कुछ सूरतें ख़ास तौर पे मक्की सूरतों की पहचान ये है कि उसके शुरू में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हरूफ़ तहज्जी में से ही हैं, जैसे अलिफ़ बा ता सा जीम है। इन्हीं से मिलके कोई भी लैंग्वेज बनती है ना, उर्दू को देख लें, अरबिक को देख लें, इन्हीं लफ्ज़ों से मिलके बनती है। अल्लाह ताला ने अरब लोगों को, जिनको अपनी ज़ुबानदानी पे बड़ा मानता, बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम बड़े अदीब हैं और हमारा फ़लसफ़ा बहुत ऊंचा है, तो उनको बेबस करने के लिए सूरतों के शुरू में कुछ लफ्ज़ रखे, जैसे सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम, फिर सूरह आल इमरान में भी अलिफ लाम मीम है, फिर उसके बाद बीच की सूरतें जहाँ शुरू होती हैं सूरह आराफ और उससे आगे उसमें अलिफ लाम रा शुरू हो जाता है, फिर इसी तरह काफ हा या आइन स्वाद, इसी तरह यहाँ यासीन, दो लफ्ज़ हैं। अब इसकी तफसीर बाज़ लोगों ने करने की कोशिश की, वो कहते हैं या से मुराद ए यानी खिताब का सीगा और सीन से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इस बारे में एहतियात की ज़रूरत है। बाज़ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यासीन कहते हैं, हालांकि इसकी कोई सही सनद हमारे पास मौजूद नहीं है। बाज़ कहते हैं कि सीन से मुराद शख्स है, मर्द इंसान, या से मुराद है और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जिस बारे में अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, जब आपसे लोगों ने पूछा था कि ये रूफ़ मुक़त्तात के क्या मानी होते हैं तो आपने कहा कि और अल्लाह ही इन जानता है कि इससे क्या मुराद है, अल्लाह ने अपने नबी को नहीं बताया तो हमें कैसे पता चलेगा। और जो बात अल्लाह ने अपने नबी को नहीं बताई, क्या फिर हम अपने पास से उसकी तावील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाज़ लोग अपने घरों में इसके बना के प्रिंट्स भी लगवाते हैं, या जैसे क्या बोलते हैं उसको, वॉल हैंग्स बने होते हैं। अब देखिए कि कुरान के वाकई लफ्ज़ भी हैं जैसे ये भी हैं। आप कुरान की कोई आयत लिख के लगा रहे हैं, लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। कोई आपने घर में गुलदान लगाया, कोई फूल लगाए हैं, कोई पेंटिंग लगाई है, आपको ये अच्छे लगे लगा लें, लेकिन उसके बाद अगर आप उससे कोई चीज़ें वाबस्ता करते हैं ना कि इससे बरकत होगी और इससे जिन भाग जाएंगे और ऐसे होगा, तो फिर उसके लिए दलील चाहिए। एक ईमान वाले का मिजाज क्या होना चाहिए कि वो लफ्ज़ों को समझे। और सोचने की बात है कि बिलफर्ज़ अगर आप अपने घर में खूबसूरत लफ्ज़ों में लिख के लगा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी पेंटिंग लगाते हैं, तो हो सकता है कि उसको देख के दिल में शुक्र आ ही जाए, आपका दिल चाहे अल्लाह की हम करने को, तारीफ करने को, आपको समझ आ रहा है मानी। लेकिन वो लफ्ज़ जिनका मानी ही नहीं पता, उनको लगाने से फ़र्क क्या पड़ेगा? सिर्फ ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने दीनी शौक का इजहार करते हुए लगा देते हैं। तो बहरहाल यहाँ यही बात काफ़ी है कि ये हरूफ मुक़त्तात हैं। फरमाए वल कुरान अल हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की। अल्लाह, क्या है कसम का जवाब? क्या है? इन्नक लमिनल मुरसलीन, बिला शुबा आप रसूलों में से हैं। कहाँ हैं आप? अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने कसम खाई, किसकी? कुरान की। यहाँ जो वाव है ना, ये कसम का होता है। अरबी ज़ुबान में वाव बहुत जगह मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल आता है, और जैसे आखिरी पारों में तो बहुत ही ज़्यादा है ना, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, या वन नाज़ियाती गरका वन नाशिताती नश्ता, तो ये सारे जो खाली वाव होते हैं ना, ये कसम के लिए आते हैं। और कसम जो होती है ये शहादत के कायम मुकाम होती है। बाज़ दफ़ा जहाँ कसम खानी होती है, उसकी गवाही के तौर पे भी वो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लियान की एक सूरत होती है जो शोहर और बीवी की आपस में नाचाकी की वजह से, बस है कि अगर बीवी अपने शोहर को किसी ऐसे खिलाफ शरीयत काम में देखे, यानी जिसको जिना कहते हैं बिलफेल, उसकी शुरुआत नहीं बल्कि बिलफेल जो जिना का फेल होता है, अब वो बीवी उस मर्द के साथ नहीं रह सकती, ना वो उसको रहने का हुक्म है, अब वो क्या करे, दूसरों को बताएगी तो उसको कोड़ी पड़ेंगे। तो इस सूरत में फिर शोहर और बीवी के बीच में लियान करवाया जाता है जो हुक्मरान के सामने होता है। तो उस सूरत में भी जो कस्में खाई जाती हैं वो शहादत ही के कायम मकाम होती हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ 3 आयात में एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। क्या? वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान की। यहाँ एक छोटी सी बात कर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने तो कहा कुरान की कसम, क्या हम भी कसम खा सकते हैं कुरान की? बाज़ लोग बच्चों की कसम, बेटे की कसम, पोते की कसम, दूध की कसम, पूत की कसम, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें इस बारे में भी मालूम होना चाहिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की कसम खा सकते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा असूल याद रखने की बात है। पहली बात यह कि कसम खाना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कसम खाए वो सच्ची कसम खाए या चुप रहे, खामोश रहे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब वो बोलेगा तो फिर झूठी कसम हुई तो बहुत ज़्यादा पकड़ होगी। फिर दूसरी बात यह है कि बाप दादा पोते इनकी, यानी किसी भी मादी चीज़ों की कसम हम नहीं खा सकते, क्योंकि कसम खाना गोया कि किसी चीज़ को अल्लाह ताला के साथ शरीक करना है। सिर्फ कसम खाई जा सकती है तो किसकी खाई जा सकती है? अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात की कसम खाई जा सकती है और अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स हैं जैसे। अब कुरान की कसम खाने का जो तरीका कार हो सकता है वो क्या है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। थोड़ी सी आप लोगों के लिए ये बातें नहीं होंगी, लेकिन चूंकि ये तफसीर का सेशन है तो आप इसको बाद में इंजॉय करेंगे अगर अभी ना भी समझ सके। यानी कुरान जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो अब ये मेरा बोलना मेरा कलाम है, तो ये मेरा एक काम है ना। इसी तरह ये कुरान मखलूक नहीं है। जैसे मतलब हम अल्लाह की मखलूक है ना, पहाड़ अल्लाह की मखलूक हैं, आसमान अल्लाह की मखलूक हैं, सूरज चांद मखलूक है, उनकी हम कसमें नहीं खा सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते चांद की कसम, सूरज की कसम, वो अल्लाह ने खा ली, उसकी मखलूकात हैं, वो जो मर्जी करे। हम खाएंगे तो या तो अल्लाह की कसम या फिर अल्लाह के किसी फेल को सामने रखते हुए कुरान की कसम खा सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें। पहली बात है कि सच्ची कसम हो, क्योंकि झूठी खाएंगे तो बहुत बड़ा वबाल आएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है इसलिए खा रहे हैं। लेकिन पसंदीदा और मुस्तहसन अमल क्या है कि कसम ना खाई जाए। अगर कोई कसम खा ले, झूठी कसम खाएगा तो गुनाहगार होगा, तौबा करनी चाहिए। कसम खाई और उसको पूरा नहीं कर सका, उसका कफ़ारा सूरत मायदा में पीछे हम पढ़ चुके हैं कि फिर उसको खाना खिलाना पड़ेगा, 3 रोज़े रखने पड़ेंगे या ग़ुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा। तो यहाँ फरमाए वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान पाक की, क्या इन नकल मिनल मुरसलीन। ये है पहली बात जो इस कसम के बाद बताई गई। जहाँ कहीं भी कसम खाई जाती है ना, उसके आगे उसका जवाब ज़रूर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह की कसम, तो आप फ़ौरन पूछेंगे क्या, उसके बाद मैं कहूँगी ना मैं वहाँ गई थी या मैं वहाँ नहीं गई। ये जो अगली बात होती है ये लाजमी होती है ना कसम के बाद, इसको जवाबे कसम कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाने के बाद क्या कहा कि इन्नक लमिनल मुरसलीन, आप वाकई रसूल हैं। दूसरी बात, अला सिराते मुस्तकीम, आप सीधी राह पर गामजन हैं, यानी आप उम्मीद थे, आपने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसके बावजूद इतना प्यारा कलाम बयान करने के लिए आप लोगों के सामने जो मौजूद हुए, इससे क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज भी देखिए कि लोग सबसे ज़्यादा शुबा अल्लाह के नबी की ज़ात के ऊपर ही पेश करते हैं, कहते हैं इसको कर दो। बस लोग कहते हैं कि हमारे फलां मर्द जो हैं या फलां, वो हदीस को नहीं मानते। अच्छा जी, फिर अब हदीस को नहीं मानते तो अब मैं क्या करूँ? क्या आपने आज के दौर में ये सुना है मसला कि आज के दौर का जो सबसे बड़ा एक शोशा है ना, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बीच से निकाल दो, आपकी ज़ात जो है ना इसको मशकूक कर दो। कभी आपकी 11 शादियों को बुनियाद बनाया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। मक्का वालों ने भी यही कुछ किया। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे थे ना, तो लोगों की दुश्मनी पैगाम से थी, उनको वो पैगाम नहीं पसंद था जो आप लाए थे ला इलाहा इल्लल्लाह का। लेकिन अल्लाह के नबी से उनको मोहब्बत थी, क्योंकि चचा ताया खानदानी रिश्तेदारियाँ भी थी। लेकिन इसके बरक्स जब आप मदीना में आए तो आपका मुकाबला जो था यहूद से हुआ, और यहूद जो थे वो नबी सल्लम से बुगज रखते थे। अब हर दौर में या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ना माना, या आपकी तरफ से आए पैगाम को ना माना। अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं, देखो इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। कभी आपने देखा है कोई बंदा आपको बहुत झुटलाए तो आपको बार बार लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। मतलब अगर आप कहीं जाएं, मिसाल दे रही है, एक समझने की बात है, जैसे आप कहीं जाएं और आप कोई कपड़े पहन ले, कोई एक आए आपके, ये क्या पहन के आई हो, आप कहेंगे हो सकता है इसने जेलसी से ये बात कह दी, फिर दूसरा भी उठे वो यही कह दे, या कोई कहे अच्छा आप तुम्हारा रंग बड़ा काला लग रहा है, आप कहेंगे ऐसे ही कहा इसने, फिर दूसरा भी ये कहे, फिर तीसरा भी कहे, तो आपको एकदम शुभ पड़ेगा ना कि शायद फिर मेरे साथ आज कोई गड़बड़ है। ऐसे ही ना बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब लोग किसी को छुटलाने लगते हैं ना, उसकी बात को एक झुटलाए दूसरा झुटलाए, तो वाकई इंसान को शक होने लगता है अपने बारे में कि मैं वाकई झूठा तो नहीं, शायद मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। तो इसी पे कहा नहीं इन नकला लमिनल मुरसलीन। आज भी ऐसे ही होता है, जब आप हक की तरफ आते हैं ना, दीन की तरफ, तो मुआशरे के अंदर वो दीन नहीं होता जिसका तस्कर अगली आयतों में आने भी वाला है। बस दफा आप कोई एक नेकी का काम शुरू करते हैं, आप कहते हैं वाह शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी, इस उम्र में पता चला कि अल्लाह क्या चाहता है। अब आप खुशी खुशी उस पैगाम को सुन के अपने लोगों में जाते हैं तो लोग आपको झुठलाना शुरू करते हैं, ये तुम किस बातों में आ गई, ये तुमने क्या करना शुरू कर दिया। तो जब बहुत सारे लोग किसी चीज को गलत कहने लगते हैं ना, तो हमारे भी दिल में यही शक आने लगता है कि हम गलती पे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, आप यकीन रखें कि अला सिराते मुस्तकीम आप सच्चे हैं। आज हम सब के लिए भी यही पैगाम है, जब इंसान कुरान को खोलता है ना तो एक नई दुनिया आती है, एक नया पैगाम सामने आता है। उस वक्त महसूस होता है इंसान को कि मैं जो जिंदगी आज से पहले गुजार चुका वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप खुद चेक करें अपने आप को, जब आपने पहली दफा अल्लाह का कलाम सुना या शुरू शुरू में आपने सुनना शुरू किया, तो आपको नहीं लगता था कि हमारी तो हर चीज़ ही गलत है, हम तो बड़े अच्छे अपने आप को समझते थे लेकिन हमारे अंदर तो बड़ी खराबियां हैं। ये ऐसे ही जैसे आपको कोई आईना दिखा दे, आप आमतौर पर ठीक होते हैं लेकिन जब सामने आईना आता है तो आपको उसमें अपने कितने ही नक्स और कितने ही ऐप दिखते हैं। कुरान भी एक आईना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी को कि आप गम ना करें, आप बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे हैं, और तंजील अल अजीज रहीम, ये किताब तो गालिब और रहम करने वाले का नाजिल किया हुआ है। आप रसूल हैं, आप जो बात कहते हैं वो सच है, और ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा गया। या ये नहीं कहा कि तंजीलुम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नहीं, बल्कि क्या कहा, अल अजीज रहीम, गालिब और रहम वाले की तरफ। अल्लाह ताला का नाम अल अजीज जो है ना, ये चार मानों में इस्तेमाल होता है, इज्जत, कहर, कुदरत और कदर। इज्जतुल कदर होती है कि इज्जतु का, यानी अल्लाह का गलबा बताया गया। दुनिया में देखिए कि किसी भी किताब को पहचाने तो उसकी तंजीलुल अजीज़र रहीम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गालिब रहम करने वाले की तरफ से ये किताब आई है। मुराद क्या है इससे, कि वो ज़ात जो बंदे के ऊपर गालिब भी है, बंदे को इज्जत भी देती है, बड़ी इज्जत वाली भी है, कहर वाली भी और कुदरत वाली भी है। अब इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि आया क्यों, लितुनज़िरा क़ौमम्मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ये इसलिए नाजिल हुआ ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके आबाओ अजदाद डराए नहीं गए थे। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ये बनी इस्माइल में से आए थे, हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम से लेकर आपके बीच में कोई नबी नहीं आया था। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मक्का वाले इतनी गफलत में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। उस दौर में तो लोगों के पास कोई नहीं आया था, लेकिन आज अगर आप देखें तो हम मुसलमानों का क्या हाल है। वो पैगाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को पहुंचा, आज हमने उसको कैसे समझा? क्या आज हम उस पैगाम को सुन के महसूस करते हैं कि हमें भी ये कुरान आता है? हम सिर्फ अपने दिलों की कैफियत को ही देखें कि जब हमें इस कुरान के एक एक लफ्ज़ को पढ़ने का समझने का मौका मिलता है तो क्या हमें महसूस होता है कि एक नेमत है, ये एक दौलत है जो हमारे लिए अल्लाह ने खास कर दी। हम अमूमन कहानियाँ सुनने के आदी होते हैं, हम बस दीन के नाम पे भी बाज़ दफ़ा वो बातें सुनना पसंद करते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंसान के लिए फ़ज़ाइल की बातें हों, ये पढ़ लो तो इतना सवाब, ये कर लो तो इतना सवाब, इस वजीफे का इतना अजर, इसका इतना अजर। लेकिन जब सच्चा कुरान खुलता है हमारे सामने तो उस वक्त फिर इंसान का मामला कैसा होता है। इन तीन आयतों में अल्लाह ताला ने बता दिया कि ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था। अल्लाह ने इंसान को नबी की सूरत में एक रोल मॉडल दिया, आप खुद चूंकि सिराते मुस्तकीम पे थे, आपकी पूरी जिंदगी हमारे लिए उसवे हसना थी, और आज बाद में आने वाले लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल थे। आज अगर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत को देख लिया जाए तो क्या लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं, और जिस सिराते मुस्तकीम पर वो थे हम भी उस पर हैं। और ख़ास तौर पे ये बात कि अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ इस नबी को भेजा जिनको पहले नहीं डराया गया था। आज के दौर में मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों का भी यही मसला है। कई साल हो गए हमारी उम्मत के अंदर सीखने और समझने का मिजाज नहीं रहा। अगर मैं गलत कहूँ तो आप इसकी तरदीद कर सकते हैं। एक पिछली पूरी जनरेशन यानी 1900s की जो सेंचुरीज गुजरी हैं उसमें ये मिजाज बन गया कि कुरान को समझने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे औरतों को तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और घर बैठो नमाज पढ़ो, बच्चे पालो, और बहुत हुआ तो सुबह शाम कुरान की तिलावत कर लो, और कुछ मखसूस सूरतें मखसूस आयतें उनके वर्द कर लो। कोई बीमार हो जाए तो पानी पे फूंक के उसको पानी पिला दो, किसी पे साया हो जाए तो कोई आयतों के पता नहीं तावीज़ बना के पहना दो। लेकिन वो कैफियत के लिए तुनज़िरा कौमम्मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, इतनी पुरदर्द किस्म की अपील है ना इसमें कि जब कहीं पैगाम नहीं पहुंचता ना तो फिर वो लोग गाफिल हो जाते हैं। आज भी उम्मत गफलत में सोई हुई उम्मत, उनको पता ही नहीं है कि हम आए क्यों। आप राह चलते 10 लोगों से ज़रा ये पूछ लीजिए कि बताइए कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। हर बंदा अपनी पसंद का मकसद लेके बैठा हुआ है। हम सोचते हैं हाँ ये मकसद था कि नमाजें पढ़ें, ये तो कोई मकसद नहीं था। नमाज तो मकसद तक पहुंचने में मदद देती है, वो अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। वो तो दिन में 5 बार मैदान महशर में खड़े होकर अल्लाह ताला की तरफ से जो कियामत के दिन हमसे सवाल जवाब होने हैं उसका एक छोटा सा इम्तिहान होता है। असल जो मकसद नहीं, मकसद क्या था कि लोगों को आगाह किया जाए। लि तुनज़िरा, नुज़ुर का लफ्ज़ इसमें आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि बल्लिगो अन्नी वलहु आया, एक आयत अगर तुम्हें पहुंच जाए उसको भी दूसरों को पहुंचाओ। इतना ये एक ऑनरेबल काम था कि अल्लाह ने इंसानों में से बेहतरीन इंसानों को चुना। आप देखें कि अगर इंसानों के लेवल देखें ना, सबसे ऊपर अंबिया होते हैं, फिर उसके बाद सिद्दीकीन होते हैं, फिर शुहदा होते हैं, फिर सालेहीन होते हैं। सबसे पीक पे अंबिया कराम है, अल्लाह ने उनको अपने पैगाम के लिए उठाया। आज के दौर में अगर कोई अल्लाह के पैगाम को खुद पेश करता है या उसके रास्ते में मुआविन बनता है तो वो गोया के अल्लाह के नबियों वाला और अल्लाह के नबियों के साथियों वाला काम करता है। ये मकसद था और इसी से बचेंगे। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें लोग कितने हिदायत से दूर हैं। ईमान वालों का नाम चले ना लें वो तो शुक्र है, मुसलमान घरों में पैदा हुए, आप नॉन मुस्लिम तक कहाँ पहुँचे। इतने लोग हमारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम्स होते हैं, हम कहाँ उन तक बात लेके पहुँचे। असल में आए भी इसीलिए थे, और यही काम करेंगे तो बचेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो, वरना करीब है कि तुम दुआएं करो और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल ना करे। आज लगता है कि दुआएं कबूल हो रही हैं। आज इंसानियत एक अजीब डिप्रेशन का शिकार है। दूर से लोग हमें देखें तो कहेंगे वाह कितने खुशकिस्मत हैं, हाय इनके पास कितना माल है, हाय इनके पास कितने बच्चे हैं, हाय इनके पास कितने जेवरात हैं, ये कितने खूबसूरत हैं। लेकिन करीब से जब आप दिलों की हालत देखेंगे तो आपको दिल रोते हुए दिखेंगे, दुखी दिल दिखेंगे। एक खातून थी, कहने लगी आपने सच कहा कि आजकल माँ बाप की आंखों में तो सिर्फ आंसू ही हैं। आपने तो ये बात कह के मेरा दिल ले लिया, ऐसी किसी दर्स में कोई बात हुई होगी बच्चों के बारे में। तो मैंने कहा कि आज के दौर में बुढ़ापे के अंदर ऐसी कैफियत आने लगती है कि माँ बाप तो सिर्फ बच्चों के लिए आंसू बहाने वाले रह जाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आपके गम और तरह के हैं, बच्चे बड़े होते हैं आपके गम भी बड़े होने लगते हैं। वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है कि हमने इस पैगाम से रिश्ता तोड़ा हुआ है। हम गफलतों में पड़ गए, हमारी जिंदगी सिर्फ अपनी ज़ात तक घूम रही है। हमें गम इस बात का कि मेरा घर है कि नहीं, मेरे घर में खाना है कि नहीं, मेरे बच्चों की शादियां हो गई कि नहीं, मेरे फुला मेरा शौहर मेरे बच्चे मेरे माँ बाप। ठीक है इनफरादी सतह पे जीना अच्छा है, लेकिन असल जो इंसानियत की मेराज है कि वो इंसानों के लिए जिए। अल्लाह ताला कहते हैं इनको गफलतों से दूर करने के लिए किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अल्लाह का एहसान होता है उस ग्रोह पे कि जिनको अल्लाह ताला अपने पैगाम के लिए चुन लेता है। आज के इस गए गुजरे दौर में जो लोग दीन इस्लाम को फैलाने की या अल्लाह के पैगाम को फैलाने की बातें करते हैं, अल्लाह के उनका बड़ा मुकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद भी यही था। सूरह फुरकान में भी अतली यकून लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान पाक में अमूमन नबी सल्लम के बारे में जो बात आती है वो नज़ीर और बशीर की इकट्ठी आती है, ये वो मुकाम है कि जहां सिर्फ लितुनज़िरा की बात है, नुजुर। और नुजुर कहते हैं शफकत से डराना। जैसे बाप बच्चे को डांटता है ना, तो उसमें मोहब्बत भी होती है, उसमें गुस्सा भी होता है, उसमें सख्ती भी होती है, उसमें नरमी भी होती है। तो अल्लाह के नबियों ने कोई डंडे के जोर पे नहीं मनवाया, उन्होंने आके हर वक्त लोगों को ये नहीं कहा उठो नमाज में पढ़ो, नहीं। ये तो आज हमारी हालत है, पहले सोए रहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं ये बच्चे हैं इनको क्या समझाना, कोई अदब की जरूरत नहीं, कोई उनको तमीज ना सिखाओ। जरा बड़े होते हैं जब हमारी बात नहीं मानते फिर हम कहते हैं ये बात नहीं मानते, और थोड़े जवान हो जाते हैं फिर हम कहते हैं अब ये हमारे घर से ही जा रहे हैं, अब ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं सुनते, तुम्हारा बच्चा है, तुम थोड़ी इसके बच्चे हो। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा माँ की ना सुने या बाप की ना सुने। जरूरत इस बात की होती है कि हम वक्त पे इसकी कोशिश करें। आज हमारी जिंदगी में और तरबियत के अंदर वो रंग नहीं दिखता कि जो एक मुसलमान का रंग होता है। नतीजा क्या हुआ कि फहम गाफिलून, गफलतें हैं, पर्दे ही पर्दे पड़े हुए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिनके पास किताब नहीं पहुंची वो गाफिल तो है, जिनके पास पहुंची और वो पढ़ नहीं रहे वो भी गाफिल है। क्या आज आपको नहीं लगता, उम्मत मुस्लिम आपको लगता है कि गफलतों में? देखिए एक शख्स सोया होता है ना, उसको जगाना आसान है, लेकिन जो जागते हुए सोता बना जाए उसको जगाना और मुश्किल है। आज हम मुसलमान सोए हुए हैं, हमें फिक्र ही नहीं इस बात की दुश्मन हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, हमारी जात को क्या खतरे हैं। हमें ये तो गम हो सकता है कि हमारा बिजनेस आजकल फ्लॉप हो रहा है, हमें ये तो फिक्र हो सकती है कि हमारी फैक्ट्री जो है उसकी सेल कम हो गई, लेकिन हमें अमूमन मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा के हालात नहीं दिखते। इसी चीज को यहाँ पेश करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गफलतों में है। अल्लाह अकबर। और यही गफलतें जो हैं ये निकालनी पड़ेंगी, कब? जब इंसान अपनी जात से ऊपर उठ के सोचेगा, हिदायत से दूर है, अमल सवाले से दूर है। आज लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। क्या मैंने दुरुस्त कहा? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि आज इंसानों में से अक्सर को ये पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। देखे कहीं पहुंचेंगे तो तब जब हमें पता होगा कहाँ पहुंचना है। मतलब अगर आप सब यहाँ आए हैं अभी, आपको पता था ना कि इधर आना है, तो आप पहुंच गए। कोई भटक गया होगा, कोई गली दूर गया, कोई दूसरे रोड पे चला गया, लेकिन चूंकि पता था इधर आना है तो आप आ गए। बिलफर्ज घर से हम निकलते और हमें यही ना पता होता हमने जाना किधर है, किस इलाके में जाना है, किस घर में जाना है, कि आप सारा दिन भी चल चल के आप यहाँ पहुंच सकते थे, कतन नहीं पहुंच सकते थे। आज उम्मत मुस्लिमा का मसला क्या है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने जाना कहाँ है, दीन का कौन सा काम करना है। बस लोग कहते हैं बस नमाज पढ़ते जाओ यही दीन है, ठीक है बस नमाजें पढ़ते जाओ इसीलिए दुनिया में भेजा। कोई कहता नहीं बैठ के तबलीग करते जाओ तो इसलिए गए। कोई कहता नहीं जिहाद करो फिर दीन है। असल सच्चा और खूबसूरत इस्लाम नजर ही नहीं आता। अल्लाह ने हमें एक बहुत खूबसूरत काम के लिए भेजा था, एक दफा हमारा इस किताब से ताल्लुक जुड़ जाए। इसी का तذکرہ अल्लाह ताला इधर कह रहे हैं कि फहुम गाफिलून, वो गफलतों में पड़े हुए हैं। और जब इंसान इल्म से और हिदायत से दूर होता है ना तो उसकी ज़िंदगी में गफलत आती है। आजमा के देख लें, आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता ना आप गाफिल हो जाते हैं, बेकार सोना, खूब सोना, आप नींद जितनी बढ़ा लें, आप खाना जितना बढ़ा लें बढ़ता जाएगा, आप पहनने ओढ़ने का शौक बढ़ा लें। बाज़ लोगों को बाजार की क्रेव होती है, वो जब तक हफ्ते में एक दो बार बाजार ना चले जाएं, ऐसे आज देखते हैं क्या नया आया, अच्छा ज़रा देखते हैं कहाँ सेल लगी हुई है, अच्छा कहाँ, ऐसी विंडो वॉचिंग के लिए चल पड़ते हैं। ये गफलत की निशानियाँ होती हैं, उनको अपने वक्त की कीमत का एहसास नहीं होता। और जाके जब गए हैं, चलो अब आए हैं तो कुछ ले दें, फिर बेकार चीज़ लेके आ जाएंगे, पैसे भी गए, फिर घर आए देखा अब जरूरत नहीं, उसको पकड़ के किसी जगह डाल दिया, घर में ऐसे ही होने लगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें आने लगी जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी वो भी पास आने लगी। अक्लमंद इंसान कौन होता है जो गफलत से जाग के उठता है? वो सिर्फ उसी काम पर तवज्जो देता है जो उसकी ज़रूरत है और जिसका उसको फ़ायदा है। ये किताबें हिदायत लोगों को उनका मकसद याद दिलाती है, और ये छोटी बात नहीं है, ये कुछ ज़ात की तरफ से जो गालिब भी है और हिकमत वाला है, जो रहम वाला है। अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकता दुनिया में इंसानों को कि जिसको मानने से इंसानों का नुकसान हो। कोई माँ अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहती, लेकिन आप बच्चों से पूछे वो कहेंगे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी माँ है, ना हमें खेलने देती है, ना हमें ये पानी में जाने देती है। बच्चों का तो दिल हर वक्त मनमानियाँ करने को चाहता है ना, उनका तो दिल करेगा हमें सारे घर में चीज़ें फैलाने दिया जाए। और अगर इन मासूमों को ज़रा ज़ुबान दे दें तो ये कहेंगे हमारी माँ बड़ी ज़ालिम है, लेकिन माँ ज़ालिम नहीं है। माँ को पता है कि ये बच्चे का नुकसान होगा, अगर इसने बिजली की तार को हाथ लगा लिया तो ये पकड़ा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान जब अपनी मर्जी की ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं इसमें हमारा फ़ायदा है। देखो ये छोड़ो क्या होते हैं अल्लाह के हुक्म, मैं देखना ऐसे काम करूँगा, मैं तो तो लखपति बन जाऊंगा। हो गया, मान लिया उसको लाखों मिल गया, उसने कोई नाजायज तरीके इस्तेमाल किए अल्लाह की नाफरमानी के, आपका क्या ख्याल है वो कामयाब है? अल्लाह ऐसा बड़ा खर्चा डालेगा उस पर जिसमें वो सारे लाखों चले जाएंगे, कोई चोर आएगा चोरी करके ले जाएगा, कोई मुकदमा आएगा वो सारा घर कारोबार उसमें चला जाएगा। तो हम कभी भी अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकते। असल हम सब के बचने का रास्ता है, और वो क्या कि हम अल्लाह की मान लें। आ तो गए दुनिया पे, अब अल्लाह की नहीं मानेंगे तो पकड़े जाएंगे। जीने मरने के अंदाज देखिए, जिंदगी गुजारने के अंदाज देखिए। मसलन जैसे अभी गफलत की बात हुई, तो एक ये भी तो गफलत होती है ना कि आप अल्लाह से तो चले हम गाफिल हुए, हम इंसानों के हकूक से गाफिल रहते हैं। छोटी छोटी बात पे हम नाराज हो जाते हैं, छोटे छोटे झगड़ों को हम इतना तूल देते हैं। सगे भाई बाज दफा कई कई साल तक नहीं मिलते, कहीं जायदादों के झगड़े, कहीं ये मसला होता है हमारा रिश्ता होना था इन्होंने रिश्ता नहीं लिया, कहीं मंगनी टूट गई, कई कई साल तक नाराज रहे। ये गफलत है ना, बाज दफा इतनी छोटी छोटी बातों पे खानदानों में फीक पड़ जाती है कि जिसको कभी सोचा भी नहीं होता। और ये कहाँ होगा जहाँ इल्म नहीं होगा। सच्चा इल्म आ जाएगा, आप फौरन सोचेंगे अच्छा भाई ये मेरे मुकद्दर की चीज़ नहीं थी, ये लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती थी, ये मेरे बेटे के नसीब में नहीं थी। बाज दफा दो भाई बहनों में इसलिए होता है, ये बेटी तो मैंने लेनी थी, ये मेरी बहन ने क्यों ले ली, झगड़ा शुरू हो गया। ये गफलतों के पर्दे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी तमाम चीजों में पड़ने की वजह क्या थी, क्योंकि ये डराए नहीं गए। मा उनज़िरु आबाहुम, 2000 साल बाद नबी सल्लम दुनिया में आए थे। ये जो बीच का वक्त था ना, जो खास तौर पर हजरत ईसा और नबी सल्लम के बीच का, इसको जमनुल फतरा कहते हैं। वही नहीं आए, कोई नबी नहीं आया। नतीजा क्या हुआ कि लोग अपनी मर्जी में चले गए, और उनका हाल क्या हुआ कि वो गफलतों में गए। 360 बुत थे खाना काबा में जब अल्लाह के नबी सल्लम नबी बने। हर कबीले का एक अपना बुत था,